शुरुआती कथन
शुरुआती कथन
एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं जिन्होंने दुनिया को विकास और न्याय के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया, अमर्त्य कुमार सेन।
जी है, बिल्कुल। और सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं बल्कि एक गहरे दार्शनिक भी। 1998 में नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, लेकिन सम्मान से ज्यादा उनके विचारों का वजन है।
सही कहा। उनका काम सिर्फ आंकड़ों या यू नो सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने गरीबी, अकाल, असमानता, इन सब मुद्दों को बहुत ही मानवीय संवेदना के साथ देखा
और उसमें एक दार्शनिक गहराई भी डाली। उनका सबसे मशहूर आइडिया वो कैपेबिलिटी अप्रोच यानी क्षमता दृष्टिकोण, इसी का नतीजा है।
तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे, उनके जीवन, उनके वो क्रांतिकारी विचार और ये भी कि आज की दुनिया में उनके ये विचार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। कोशिश रहेगी कि उनके काम के सार को समझें।
हाँ, खासकर वो क्षमता दृष्टिकोण और न्याय की उनकी जो अनोखी अवधारणा है उस पर।
तो कहाँ से शुरू करें, उनके समय और माहौल से?
हाँ, वो जरूरी है। देखिए, सेन का बौद्धिक विकास हो रहा था 20वीं सदी के मध्य में। भारत बस आजाद हो रहा था, दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था।
हाँ, वो पूंजीवाद बनाम समाजवाद वाली बहसें जोरों पर थी।
बिल्कुल। और विकास अर्थशास्त्र मतलब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक नए विषय के तौर पर उभर रहा था, तो ये बड़े बदलावों का और बड़ी बहसों का दौर था।
और इसी दौर में, बल्कि उनके बचपन में ही, एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसने, मुझे लगता है, उन पर और उनके काम पर सबसे गहरा असर डाला। 1943 का बंगाल का अकाल।
हाँ, वो अनुभव तो उनके काम के बिल्कुल केंद्र में रहा है। उन्होंने एक बच्चे के तौर पर उस त्रासदी को बहुत करीब से देखा था।
मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अपने घर के बाहर किसी को भूख से तड़प कर मरते हुए देखा था।
हाँ, ये एक बेहद दर्दनाक अनुभव था। और सबसे चौंकाने वाली बात उनके लिए ये थी कि पास के बाजारों में अनाज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो आदमी मर गया।
बाप रे।
इसी अनुभव ने उनके दिमाग में वो सवाल हमेशा के लिए डाल दिया कि अकाल आखिर होता क्यों है, क्या वाकई सिर्फ अनाज की कमी से?
और यहीं से उनके उस प्रसिद्ध सिद्धांत की नींव पड़ी होगी कि शायद समस्या अनाज की कुल मात्रा की नहीं बल्कि लोगों की उस तक पहुंच ना हो पाने की है।
बिल्कुल सही। यही विचार बाद में उनका जो फेमस एंटाइटलमेंट थ्योरी बना, यानी हक या पहुंच का सिद्धांत, उसका आधार बना।
ये तो उस समय की सोच से एकदम अलग रहा होगा।
बहुत अलग। उस समय आम धारणा यही थी कि अकाल मतलब अनाज की पैदावार कम होना, लेकिन सेन ने दिखाया कि भाई बाजार भरे हो सकते हैं फिर भी लोग भूख से मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उसे खरीदने का या किसी और तरीके से पाने का हक या क्षमता नहीं है। शायद उनकी नौकरी चली गई या कीमतें बहुत बढ़ गई।
ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी था।
हाँ,
और उनके जन्मस्थान का भी असर रहा होगा, है ना? शांति निकेतन।
हाँ, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व भारती। वो माहौल तो यकीनन खास रहा होगा।
बेहद खास। वहां भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और दूसरी तरफ पश्चिमी तार्किक सोच, एनालिटिकल फिलॉसफी, इन सब का एक अद्भुत संगम था।
उनके नाना जी क्षिति मोहन सेन,
वो तो खुद संस्कृत के बड़े विद्वान थे और टैगोर के करीबी भी।
दादाजी थे क्षिति मोहन सेन। हाँ, वो संस्कृत और मध्यकालीन भारतीय साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। और एक और मजेदार बात, अमर्त्य सेन का नाम अमर्त्य, जिसका मतलब है अमर, वो खुद गुरुदेव टैगोर ने ही रखा था।
अच्छा, तो मतलब विचारों की दुनिया तो उन्हें विरासत में ही मिली एक तरह से।
हाँ, कह सकते हैं। शिक्षा भी वहीं शुरू हुई शांति निकेतन में, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकटा से अर्थशास्त्र और गणित में ग्रेजुएशन किया।
और फिर कैम्ब्रिज।
जी, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, वहां उन्होंने केनेथ एरो के अंडर पीएचडी की। एरो खुद नोबेल विजेता थे, सोशल चॉइस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं।
तो अकादमिक रूप से तो बहुत सॉलिड बुनियाद थी, लेकिन उनके निजी जीवन का एक और अनुभव है जिसने उनके विचारों को, खासकर स्वास्थ्य को लेकर उनकी सोच को काफी प्रभावित किया।
हाँ, आप उनके युवावस्था में हुए कैंसर की बात कर रही हैं। हाँ, उस बीमारी से उनका जो संघर्ष रहा उसने उन्हें स्वास्थ्य के महत्व का बहुत गहरा एहसास कराया। उन्होंने ये महसूस किया कि भाई स्वस्थ रहना सिर्फ एक निजी मामला नहीं है, ये तो जीवन में कुछ भी करने या बनने की एक बुनियादी क्षमता, एक कैपेबिलिटी है।
और इसने उनके क्षमता दृष्टिकोण को और मजबूत किया होगा।
निश्चित रूप से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं।
तो चलिए अब आते हैं उनके सबसे प्रभावशाली विचार पर।
जी,
क्षमता दृष्टिकोण यानी कैपेबिलिटी अप्रोच, ये असल में है क्या अगर सरल शब्दों में समझना हो तो?
देखिए, पारंपरिक अर्थशास्त्र क्या देखता है, वो देखता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी, GDP कितना बढ़ा,
है ना, ज्यादातर यही पैमाने होते हैं।
सेन ने इसी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, असली विकास सिर्फ पैसा या संसाधन होना भर नहीं है। असली सवाल ये है कि लोग उन संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी पसंद का जीवन जीने में कितने सक्षम हैं, उनकी वास्तविक स्वतंत्रता कितनी है।
अच्छा, मतलब उदाहरण से समझाइए थोड़ा।
जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसे तो हैं कार खरीदने के, ये तो हुई आय, लेकिन क्या उसके पास अच्छी सड़कें हैं? क्या उसे लाइसेंस आसानी से मिल सकता है? क्या माहौल सुरक्षित है गाड़ी चलाने के लिए? ये सब मिलकर उसकी कार इस्तेमाल करने की क्षमता तय करेगा।
या जैसे शिक्षा के लिए सिर्फ स्कूल बना देना काफी नहीं है।
बिल्कुल नहीं। क्या एक लड़की सुरक्षित स्कूल जा सकती है? क्या उसे घर पर पढ़ने का माहौल मिलता है? क्या उसके माँ बाप उसे स्कूल भेजना चाहते भी हैं? ये सब बातें उसकी शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता या कैपेबिलिटी को दर्शाती हैं।
समझ गए। तो ये सिर्फ संसाधनों का होना नहीं, बल्कि उनका उपयोग करके अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की वास्तविक स्वतंत्रता है।
एग्जैक्टली। सीन के लिए विकास का मतलब है लोगों की इन्हीं क्षमताओं का विस्तार, वो चीजें जिन्हें लोग महत्व देते हैं, जैसे अच्छा भोजन पाना, स्वस्थ रहना, पढ़ना लिखना, समाज में इज्जत से रहना, अपनी बात कह पाना, इन सबको करने और होने की वास्तविक स्वतंत्रता का बढ़ना ही विकास है।
ये तो मतलब विकास की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये सिर्फ उपयोगिता या खुशी बढ़ाने से कहीं आगे की बात है।
हाँ, ये मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी और चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस पर केंद्रित है।
लेकिन आलोचक इस पर सवाल उठाते हैं कि ये क्षमताएं तो बहुत व्यक्तिपरक हो सकती हैं। किसको क्या महत्वपूर्ण लगता है ये अलग अलग हो सकता है, फिर इन्हें मापना, इनकी तुलना करना, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या इसकी कोई फिक्स लिस्ट है?
ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर काफी बहस भी हुई है। सेन जानबूझकर क्षमताओं की कोई एक यूनिवर्सल लिस्ट नहीं देते। वो कहते हैं कि ये तो समाज पर निर्भर करता है, वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है कि वो किन क्षमताओं को ज्यादा महत्व देते हैं।
तो फिर तय कैसे होगा?
उनका जोर प्रक्रिया पर है, पब्लिक डिबेट, सार्वजनिक बहस और लोकतांत्रिक विमर्श के जरिए ये तय होना चाहिए कि किसी समाज के लिए कौन सी क्षमताएं प्राथमिकताएं हैं। हाँ, ये सच है कि इन्हें मापना जटिल है, पारंपरिक तरीकों से मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
और इसी सोच का असर हमें संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक HDI पर भी दिखता है ना?
हाँ बिल्कुल। HDI जो 1990 में शुरू हुआ, वो सीधे तौर पर सेन के काम से प्रेरित है। वो विकास को सिर्फ आय से नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे पहलुओं से भी मापता है।
हाँ, वो GDP से आगे जाने की कोशिश है।
जी, हालांकि HDI उनके कैपेबिलिटी अप्रोच का एक सरलीकृत सिंप्लीफाइड रूप है, लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि उनके विचारों ने विकास को देखने का नजरिया कैसे बदला है, और इसका असर नीतियों पर भी पड़ा है। दुनिया भर में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जेंडर इक्वालिटी पर काम करने वाली संस्थाएं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई हैं।
अच्छा, वापस उनके अकाल वाले सिद्धांत पर आते हैं। आपने बताया कि वो बंगाल अकाल के अनुभव से निकला था, तो इस एंटाइटलमेंट थ्योरी ने अकाल राहत और रोकथाम की नीतियों को असल में बदला कैसे?
इसने पूरा फोकस ही बदल दिया। पहले क्या होता था, अकाल पड़ा मतलब बाहर से अनाज भेजो।
हाँ, फूड सप्लाई पर ध्यान होता था।
सेन के सिद्धांत ने कहा, रुको, पहले देखो कि समस्या क्या है। हो सकता है अनाज तो हो, लेकिन लोगों के पास उसे खरीदने की ताकत ना हो। हो सकता है उनकी नौकरियां चली गई हों, हो सकता है वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हो गया हो। तो नीतियां अब सिर्फ खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर नहीं रहीं, बल्कि लोगों की भोजन तक पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए, रोजगार कैसे पैदा किया जाए, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सेफ्टी नेट कैसे मजबूत किया जाए, इन सब पर ध्यान केंद्रित हुआ। उनकी वो किताब है ना, पॉवर्टी एंड फैमिन्स, 1981, उसमें ये सब बहुत विस्तार से है।
ये तो वाकई सोचने का एकदम नया तरीका था उस समय। अच्छा, उन्होंने सामाजिक चयन सिद्धांत पर भी काम किया, अपने PhD गाइड केनेथ एरो के काम को आगे बढ़ाया। उसका क्या महत्व है?
हाँ, एरो का जो मशहूर इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, वो ये दिखाता है कि अलग अलग लोगों की पसंद को मिलाकर एक तर्कसंगत सामाजिक पसंद बनाना कितना मुश्किल है अगर हम कुछ बुनियादी लोकतांत्रिक शर्तें पूरी करना चाहें तो।
अच्छा।
सेन ने इसमें व्यक्तिगत अधिकारों और सूचना जैसे पहलुओं को जोड़ा। मतलब उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि समाज कैसे इतने सारे अलग अलग विचारों और अधिकारों का सम्मान करते हुए फिर भी मिलकर फैसले ले सकता है। ये काफी जटिल लेकिन महत्वपूर्ण काम है
और ये उनके लोकतंत्र पर जो विचार हैं उनसे जुड़ता है।
बिल्कुल जुड़ता है। सेन के लिए लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराना या कुछ संस्थाएं बना देना भर नहीं है।
तो फिर क्या है असली लोकतंत्र उनके हिसाब से?
असली लोकतंत्र वो है जिसमें समाज के सबसे कमजोर, सबसे वंचित तबकों की आवाजें भी सुनी जाएं। सिर्फ सुनी ना जाएं, बल्कि नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में उनका वजन भी हो। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, शायद आपने सुना हो।
हाँ, बताइए।
लोकतंत्र का मूल्यांकन केवल औपचारिक रूप से मौजूद संस्थानों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि लोगों के विभिन्न वर्गों की विविध आवाजें वास्तव में किस हद तक सुनी जा सकती हैं।
बहुत खूब। ये बात आज भी कितनी सच है।
बिल्कुल।
उनके विचारों की तुलना अक्सर एक और बड़े दार्शनिक जॉन रॉल्स से भी होती है। दोनों न्याय पर बात करते हैं लेकिन शायद अलग तरह से।
हाँ, ये तुलना अक्सर होती है और ये काफी दिलचस्प भी है। जॉन रॉल्स जो है वो न्याय के आदर्श सिद्धांतों पर फोकस करते हैं। मतलब एक पूरी तरह से न्यायपूर्ण समाज कैसा दिखेगा, उसकी संस्थाएं कैसी होंगी, एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, एक आइडियल स्टेट।
हाँ। दूसरी तरफ सेन का जोर इस बात पर है कि हम वास्तविक दुनिया में जो अन्याय मौजूद है उसे कैसे कम करें। वो ये नहीं पूछते कि सबसे अच्छा समाज कौन सा है, बल्कि ये पूछते हैं कि हमारे पास जो विकल्प है उनमें से कौन सा कम अन्यायपूर्ण है, कौन सा ज्यादा न्याय की तरफ ले जाता है।
मतलब वो तुलनात्मक न्याय की बात करते हैं।
सही कहा। इसे उन्होंने अपनी किताब द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में विस्तार से समझाया है। वो न्याय को किसी एक अंतिम आदर्श लक्ष्य की तरह नहीं देखते, बल्कि एक तुलनात्मक नजरिए से देखते हैं।
तो कह सकते हैं कि रॉल्स का फोकस मंजिल पर है और सेन का रास्ते पर, यानी मौजूदा अन्याय को कैसे घटाएं, इस पर।
हाँ, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं। सेन का नजरिया ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा जमीनी लगता है कई लोगों को। वो मानते हैं कि हमें किसी काल्पनिक परफेक्ट समाज का इंतजार करने की बजाय आज हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए।
और उनके काम में वो भारतीय दर्शन वाला पहलू भी है ना?
हाँ, ये भी एक खास बात है। वो पश्चिमी एनालिटिकल फिलॉसफी के साथ साथ भारतीय दार्शनिक परंपराओं जैसे न्याय, तर्कशीलता, पहचान, इन सब के विचारों को भी अपने काम में लाते हैं। ये संगम उनके काम को अनूठा बनाता है।
उनकी एक और किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, वो भी बहुत प्रभावशाली रही।
जी हाँ, वो किताब बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने उनके कैपेबिलिटी अप्रोच को एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया। उसमें उन्होंने यही तर्क दिया कि भाई, विकास का असली मतलब है स्वतंत्रता का विस्तार।
सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं?
नहीं, हर तरह की स्वतंत्रता। राजनीतिक आजादी, आर्थिक अवसर, सामाजिक अवसर, सुरक्षा की गारंटी, सूचना की पारदर्शिता, ये सब मिलकर लोगों को वो क्षमता देती हैं कि वो अपनी पसंद का जीवन जी सकें।
उनके कुछ और कथन भी हैं जो उनके मूल विचारों को बहुत अच्छे से सामने रखते हैं, जैसे गरीबी पर उनका नजरिया।
हाँ, वो कहते हैं गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, यह एक इंसान के रूप में अपनी पूरी क्षमता को साकार करने की क्षमता का ना होना है। देखिए कितनी गहरी बात है। गरीबी को आय के आंकड़ों से हटाकर मानवीय जीवन की वास्तविक संभावनाओं से जोड़ दिया।
बिल्कुल।
और विकास के लक्ष्य पर भी उनका मत एकदम साफ है।
हाँ, वो कहते हैं मानव विकास एक दृष्टिकोण के रूप में उससे संबंधित है जिसे मैं विकास का मूल विचार मानता हूँ, अर्थात मानव जीवन की समृद्धि को आगे बढ़ाना, न कि उस अर्थव्यवस्था की समृद्धि जिसमें मनुष्य रहते हैं।
ये सीधा हमला है उस सोच पर जो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही सब कुछ मान लेती है।
सही बात है। अच्छा, जाहिर है इतने प्रभावशाली और अलग विचारों की आलोचनाएं भी होती होंगी।
हाँ, हमने कैपेबिलिटी अप्रोच की अस्पष्टता और उसे मापने की चुनौती की बात की, और क्या मुद्दे उठाए जाते हैं?
हाँ, एक चिंता कभी कभी सांस्कृतिक सापेक्षवाद को लेकर उठाई जाती है। मतलब ये सवाल कि क्या ये दृष्टिकोण कहीं पश्चिमी उदारवादी मूल्यों को गैर पश्चिमी समाजों पर थोपता तो नहीं?
हालांकि सेन हमेशा स्थानीय संदर्भों और पब्लिक डिबेट के महत्व पर जोर देते रहे हैं। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि ये सिद्धांत पॉलिसी बनाने वालों को बहुत स्पष्ट गाइडलाइन नहीं देता कि भाई किन क्षमताओं पर ज्यादा ध्यान दें, किस पर कम।
लेकिन इन बहसों के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा कि सेन की विरासत बहुत गहरी और बहुत व्यापक है, अकादमिक दुनिया से लेकर जमीनी नीतियों तक।
इसमें कोई शक नहीं, उनका काम इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, इन सबको जोड़ता है। उन्होंने हमें सिखाया कि आर्थिक विश्लेषण को नैतिक सवालों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
और आज के समय में,
आज जब हम बढ़ती हुई असमानता देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से जुड़े न्याय के सवाल हैं, मानवाधिकारों की चुनौतियां हैं, तो उनका ये फ्रेमवर्क स्वतंत्रता, क्षमता और वास्तविक न्याय पर आधारित हमें रास्ता दिखाने में बहुत मदद कर सकता है।
कुछ और रोचक बातें उनके बारे में, हमने टैगोर द्वारा नामकरण की बात की, कैंसर से उनके संघर्ष की बात की।
हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने के बावजूद वो खुद को मूलतः एक दार्शनिक भी मानते हैं। कहते हैं उनके ऑफिस में एडम स्मिथ के साथ साथ टैगोर जैसे दार्शनिकों और कवियों की तस्वीरें भी लगी हैं।
अच्छा।
और वो कई भाषाएं जानते हैं, बंगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच। उनका काम सिर्फ बंद कमरों या किताबों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने हमेशा सार्वजनिक बहसों में, पब्लिक डिस्कोर्स में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है।
तो अंत में अगर हमें अमर्त्य सेन के काम से एक मुख्य विचार, एक टेकअवे लेकर जाना हो, तो वो क्या होगा?
मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें प्रगति को, डेवलपमेंट को मापने का अपना पैमाना बदलना होगा। हमें सिर्फ राष्ट्र की आय या अर्थव्यवस्था के आकार को नहीं देखना चाहिए,
बल्कि ये पूछना चाहिए।
हाँ, हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हमारे समाज में हर एक व्यक्ति को, हर इंसान को एक सार्थक, स्वतंत्र और अपनी पसंद का जीवन जीने के अवसर और क्षमताएं मिल रही हैं? क्या हम वास्तविक अन्याय को, रियल इनजस्टिस को कम कर पा रहे हैं?
उनका काम हमें बार बार याद दिलाता है कि विकास का असली मकसद इंसान है, अर्थव्यवस्था नहीं। और ये सवाल कि विकास किसके लिए और किस कीमत पर, ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। सेन ने हमें उस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक बहुत शक्तिशाली नैतिक और बौद्धिक ढांचा दिया है।
बिल्कुल सही कहा आपने।
समापन कथन।
समापन कथन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए खत्तर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।